Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 9, Text 43.
Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Adhyay Sankhya 9, Shlok Sankhya 43.
Deva Dvijay Parabdhavataya Vachurayandhyas Kodvira Gayana Mahamvind Magna Chittaha So chaitanya vimukta chaitasa indriyartha maya sukaya param advahato vimurtham. Read the translation, please. Not the word for word, the translation.
Anuvad. He Shresh Mahapurush. मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेम वश चिंतित
हूँ।
तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति संसार भर में सारे व्यक्ति भौतिक जगत के दुखों से निपटने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। यह बात वर्तमान समय के लिए भूतकाल के लिए तथा भविष्य के लिए सत्य है। यद्यपि लोग इतनी बड़ी बड़ी राजनैतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक योजनाएं बनाते हैं तो भी यहाँ पर उन्हें विमूढ़ अर्थात मूर्ख कहा गया है। भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है लेकिन ये मूल भौतिक जगत को सुखालयम सुख का आधार बनाने पर तुले हैं। वे यह नहीं जानते कि प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार कार्य करती है और प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में अपने आप को उन सारे कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति जो मानव रूप में दुर्गा नाम से जानी जाती है असुरों को दंडित करने के लिए योजना बनाती है। यद्यपि सारे असुर जो ईश्वर विहीन दैत्य हैं जीवन संघर्ष में रत रहते हैं किंतु दुर्गा देवी जो अपने दसों हाथों में विभिन्न आयुधों से युक्त रहती हैं उन पर सीधा प्रहार करती हैं। वे अपने सिंह वाहन या रजो तथा तमोगुण पर सवारी करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति रजो तथा तमोगुणों द्वारा युद्ध करने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का घोर संघर्ष करता है किंतु अंततोगत्वा प्रकृति के नियमों द्वारा सबों का विनाश हो जाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक लोगों के बीच में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है। इसकी दूसरी ओर अर्थात आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होता है। इसे पार करना दुष्कर है जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं दैवी निये शगुण मई मम माया दुरत गया। मेरी इस दैवी शक्ति को जो तीन गुणों वाली है पार पाना कठिन है। यहाँ पर यही दुरत गया शब्द प्रयुक्त है जिसका अर्थ है अत्यंत कठिन। अतः कोई परमेश्वर की दया के बिना प्रकृति के कठोर नियमों से पार नहीं पा सकता। इतने पर भी सारे भौतिकतावादी अपनी अपनी योजनाओं से मोहग्रस्त कर भी एक इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए बारंबार प्रयास करते हैं। इसीलिए उन्हें विमूल कथक कोटि का मूर्ख कहा गया है। जहां तक प्रहलाद महाराज की बात है, वे तनिक भी दुखी नहीं थे, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वे कृष्ण भावना अमृत से परिपूर्ण थे। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, वे दुखी नहीं हैं। किंतु जिसके पास कृष्ण भावना अमृत की कोई पूंजी नहीं है और जो जीवन संघर्ष में रत है, वह न केवल मूर्ख है अपितु अत्यधिक दुखी भी है। प्रहलाद महाराज एक ही साथ सुखी भी थे तथा दुखी भी। कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अत्यंत सुख तथा दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे, फिर भी वे उन मूर्खों तथा दूर्दों के लिए अत्यधिक दुखी थे जो इस भौतिक जगत में सुखी बनने की विशेष विशद योजनाएं बनाते हैं।
Read the verse again, please.
उस अनुवाद, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ, आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेम वश चिंतित हूँ।
गुरु परंपरा प्रणाम प्लीज। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण वसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्यामलोक नारायण नमस्ते सर्वादि देवे भगवाने विचारे विशेष शून्य वादि वस्तु जाने सदा ओम अग्निनाथ विनंदस्य concerned about the influence of Maya.
परंतु जो एक कनिष्ठ अधिकारी है, उसे माया के प्रभाव से हमेशा चिंतित रहना चाहिए.
Because Prabhupada used to say to his neophyte disciples, the problem is you have no fear of Maya.
क्योंकि प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहते थे कि समस्या ये है कि आप माया से भयभीत नहीं हैं.
So there's some distinction here. Try to understand.
तो इसमें कुछ फर्क है. आप इसको समझने का प्रयास कीजिए.
The whole universe was afraid of Lord Shukadev.
पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था वो नरसिंह भगवान से भयभीत था.
Who is fear personified?
क्योंकि वे भय मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट थे.
But Prahlad Maharaj was not afraid.
परंतु प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी घबराए और
भयभीत नहीं थे.
तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड तनिष्ठ था प्रहलाद महाराज को छोड़कर.
Even Lord Brahma and all the other devas, they were terrified.
यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और अन्य देवगण भी घबराए और डरे हुए थे.
So this is the shocking truth that Prahlad Maharaj is more advanced even than Lord Brahma. Otherwise, why Lord Brahma was frightened?
तो ये एक बहुत ही दिल दहलाने वाला सत्य है कि ब्रह्मा जी से भी ज्यादा प्रगत प्रहलाद महाराज थे. नहीं तो ब्रह्मा जी क्यों घबराए होते?
You see the point? Even Lord Brahma was frightened, all the other devas. It's not surprising if a Satkama devotee like Indra Daksha, they are Satkama devotees.
Indra or Daksha, ye sabhi sakam bhakt hain.
How many of you know what means Satkama?
आप में से कितने भक्तों को सकाम शब्द का अर्थ पता है?
Okay, what means sakama? Yes, who has many material desires, but they are also Vaishnava, but having many material desires.
तो सकाम भक्त का मतलब है कि वो वैष्णव है लेकिन उनके अंदर भौतिक इच्छाएं भी हैं.
Very good. Hare Rama. So sakama.
To sakama.
No, actually, most of the Vaishnavas in the universe are sakama.
To vastav mein brahmand ke zyadatar Vaishnav sakam hain.
Whereas the pure devotees of the Lord are sudurlabha, rarely found.
और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो दुर्लभ हैं, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं.
Devas are very pious and they're situated primarily in the mode of goodness.
देवगण बहुत ही पुण्य आत्मा है और वो मुख्य रूप से सतोगुण में स्थित है.
Of course they have attacks of rajogun also.
परंतु उनको रजोगुण से भी आ सकती है.
Just like Daksha is a big deva.
जैसे कि दक्ष बहुत बड़ा देवता है.
A progenitor.
एक प्रजापति है.
Full of material desire.
बहुत सारी भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है.
It's the most amazing fact that's given in the Bhagavatam.
ये भागवतम का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सत्य है.
Even after having darshan with Lord Vishnu at the Jagma arena, he had direct personal association with the Supreme Personality of Godhead because of his pious activities.
दक्ष को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए थे यज्ञ स्थली पे और साक्षात भगवान का संग प्राप्त हुआ था अपने पुण्य कार्यों के फल स्वरूप.
Well, then he decided to perform severe austerities.
और उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की.
For what reason?
पर किस लिए?
How many of you know why did he decide to perform severe austerities?
आप में से कितने लोग जानते हैं कि उन्होंने इतनी कठोर तपस्या क्यों की?
Who knows?
कौन जानता है?
Lovely. What did he say? I'm sorry? Material what?
Riches.
I'm getting it wrong. Material what?
Money.
Money? No, it was not to get money. It wasn't to get money that he did austerities. Huh? Yes.
He performed himself for getting the power of the
Yes. He performed austerity to get greater sex power. Something like 10,000 years of austerity to get greater sex power.
उन्होंने इतनी तपस्या इसलिए की ताकि उनको मैथुन करने की शक्ति प्रदान हो.
Of course, he was thinking of sex as being his devotional service to Lord Vishnu.
निश्चित रूप से वो मैथुन को भगवान की भक्ति समझ रहे थे.
Don't try this at home.
इसे घर पर मत आजमाइएगा.
No, it is considered pure devotional service if his householders chant 50 rounds before sexual indulgence.
इसे भक्ति माना जाता है यदि गृहस्थ भक्त 50 माला करे मैथुन से संभोग करने से पूर्व.
And only at the time of the month when the wife is most likely to become pregnant, then it can be counted as devotional service.
और केवल महीने के उसी समय जब जो भार्या है वो गर्भवती होने के लिए सबसे ज्यादा उनके चांस ज्यादा है.
Just like that, therefore Krishna says in the Bhagavad Gita, I am sex life according to religious principles.
इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि मैं मैथुन जीवन हूँ जो कि धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है.
But the catch is according to religious principles, not what's known as recreational sex. In other words, sex quote for fun unquote. You know. That's not what Krishna is talking about.
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित होना, ना कि अपनी इंद्र तृप्ति और मजे के लिए. भगवान कृष्ण उसके बारे में बात नहीं कर रहे.
There are many rules and regulations. There are thousands of Vedic rules and regulations throughout the universe for performing austerity to get good progeny. Thousands of different kinds of Vedic rituals, prayers, austerities, etc.
ब्रह्मांड में अनेक असंख्य नियम हैं, लाखों नियम हैं तपस्या करने के लिए.
But Srila Prabhupada, as the founder of Charity ISKCON, made it very simple.
पर श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर संस्थापक आचार्य होने के नाते उन्होंने बहुत ही सरल कर दिया.
Householders are supposed to chant 50 rounds. I don't know how much is even known by householders, you know. They're supposed to chant 50 rounds, both of them, before sexual intercourse, specifically for the purpose of having children. That is the religious principle of for us, as the Krishna speaks of. Then it conforms to Krishna's order or Krishna's statement, I am sex life according to religious principles. If a householder chants 50 rounds at the right time of the month, then that is within the scope of what Krishna is saying.
तो प्रभुपाद जी ने सभी इस्कॉन भक्तों को जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित मैथुन जीवन को इस प्रकार से बताया कि मैथुन संभोग करने से पहले दोनों भार्या और पति और पत्नी दोनों को 50-50 माला करनी होती है और महीने के उसी समय उनको संभोग करना चाहिए जिस समय गर्भ धारण करने का सबसे अच्छा अवसर होता है. वैष्णव तो मृत्यु से भी नहीं डरते.
For example, Dhruva Maharaj, on his way out of the material world, he stepped on the head of death personified.
जैसे कि ध्रुव महाराज जब वो भौतिक जगत को छोड़ रहे थे तो उन्होंने मृत्यु जो मूर्तिमान खड़ा था उसके सिर पे पैर रख के वो आगे गए.
So death personified was right there, close to Dhruva Maharaj, but he was not at all concerned. He just stepped on the head of death personified as if he was a stepping stone.
तो यद्यपि मृत्यु मूर्तिमान स्वरूप में ध्रुव महाराज के समक्ष खड़ा था लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उससे कोई परवाह नहीं हुई और उन्होंने उनके सिर पे पैर रख के आगे बढ़े जैसे कि वो एक स्टेपिंग स्टोन है.
So that is वैष्णव
अभय निर्भय.
When Prabhupada said the problem is you have no fear of that, he means the problem with his deified disciples was that complacency. I'm being okay with Maya, that's different. No fear of Maya in that sense is not okay.
तो प्रभुपाद जी जब कहते हैं कि मेरे शिष्य माया से नहीं डरते तो इसका मतलब ये है कि जो नियोफाइट भक्त है वो अपने जो कनिष्ठ भक्त है वो अपने अपने थोड़े ढीलेपन की वजह से ये समझ लेते हैं कि माया के साथ भी चलता है तो इस प्रकार से माया से ना डरना ये ठीक नहीं है
to Krishna and Guru, please save me from the material energy.
So there. एक कनिष्ठ भक्त को तो हमेशा गुरु और कृष्ण से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि कृपया मुझे भौतिक शक्ति से बचाइए.
So what is the difference?
तो इसे क्या इसमें फर्क क्या है?
Radharaj says, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. That's the difference.
तो इसमें फर्क ये है कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से तल्लीन हूँ आपके यशोगान और आपके गुणगान में तो ये है फर्क
If you are fully absorbed in the thoughts and activities of the Supreme Personality of Godhead and the great devotees, then you are automatically a Maya.
अगर आप पूर्ण रूप से तल्लीन हैं, भक्त हैं, भगवान के और भगवान के भक्तों के गुणगान में उनके यशोमय कार्यों में तो फिर आप स्वाभाविक रूप से निर्भय हो जाएंगे
The next point, it is the second sentence in the verse. Prabhupada says, My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries.
तो दूसरा महाराज जो बात बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज अपने इस श्लोक में कहते हैं मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा दूतों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेम वश चिंतित हूँ
दिस इज एक्चुअल महात्मा
ये वास्तव एक महात्मा है
Paradukha Dukhi. Yes, who is concerned about the suffering of others and who is thinking personally, how can I bring the whole world to Krishna consciousness? That is Vaishnava.
जो वास्तव में बहुत चिंतित है दूसरों की पीड़ा दुख और कष्टों को देखकर और हमेशा सोच रहा है कि मैं कैसे सभी को कृष्णा भावना भावित बना पाऊंगा ये वैष्णव है
So he is saying that Vimudhava, they are fools and rascals, but still, in spite of the fact that they are fools and rascals, he is showing his compassion for them, his concern. That is Vaishnava.
वो कह रहे हैं कि विमूढ़ आत्मा हैं, धूर्त हैं और मूर्ख हैं, परंतु यद्यपि वे सब धूर्त और मूर्ख हैं, वो अपनी दया भावना उनके प्रति दिखा रहे हैं, तो इसे वैष्णव कहते हैं।
Because they absorb the Maya Sukhaya Param, the false burden, material plans for family, society, nation, temporary illusory happiness. Maya Sukhaya Param.
क्योंकि वे माया के जो सुख हैं, उसमें पूर्ण रूप से मग्न रहते हैं, भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के लिए पालन हेतु बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं, तो इस प्रकार से वो मूर्ख हैं।
So Vimudhan, Vimudhan is plural. All of them, although all of them are nothing but fools and rascals.
तो Vimudhan जो शब्द है, वो बहुवचन है, मतलब सभी दूर
बचाव कर रहे हैं। Saying, I'm simply concerned with love for them. This is amazing. That is
Prahlad Maharaj कह रहे हैं कि मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेम वश चिंतित हूँ तो ये बहुत ज्यादा विस्मित करने वाला है
Try to understand from these verses the actual way of thinking of a real Vaishnava.
कृपया करके आप इन सब श्लोकों से ये समझने का प्रयास कीजिए कि एक वास्तविक वैष्णव की क्या मानसिकता और सोच होती है
The way of thinking of a real pure devotee, not a neophyte pure devotee, a real pure devotee.
एक वास्तविक शुद्ध भक्त कैसे सोचता है उसे समझने का प्रयास कीजिए. कनिष्ठ शुद्ध भक्त कैसे सोचता है ये मत सोचिए.
Of course, a neophyte pure devotee, they must be following in the footsteps of Acharya.
निश्चित रूप से जो कनिष्ठ शुद्ध भक्त होता है उसे आचार्य के अनुगमन और उसके उनके बच्चों का पालन करना चाहिए.
I've described several times that a pure devotee, the term pure devotee is a pyramid shaped word and a term. It has got different definitions according to the level of.
महाराज बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत बार हमें यह समझाया है कि जो शब्द शुद्ध भक्त है वो एक त्रिकोण आकार से समझाया जाता है. उसकी अलग अलग परिभाषाओं है अलग अलग स्तरों के मुताबिक. तो अभी हम बोर्ड पे आपको बना के देखें.
It's very important to understand this concept of pure devotee.
शुद्ध भक्त की ये समझ होना ये इसका जो सिद्धांत है उसको समझना बहुत आवश्यक है.
Where's the eraser? Go on, finish the eraser. Okay. So. Here we have a pyramid.
तो यहाँ पे हमने एक त्रिकोण बनाया है.
So at the very top, and this in this pyramid, and this pyramid is the term pure devotees.
और ये पूरा का पूरा जो त्रिकोण है, ये शुद्ध भक्तों का सूचक है.
Rather than Hindi.
इसे
pure devotees. That pen's not good. The pen is failing, huh? We say it's nicely maintained. So at the very top,
सबसे ऊपर की ओर,
here we have a Mahabharat. Write, please write it. Use this pen. This pen is useless.
तो सबसे ऊपर की ओर हमारे महाभागवत का सूचक है. वास्तविक शुद्ध भक्त.
उत्तमाधिकारी.
उत्तम अधिकारी.
If you have notebooks, write this down.
अगर आपके पास अपने अपने कॉपीज हैं तो उनमें इसको लिखें.
And Nitya Siddha Vaishnavas.
तो सभी ऊपर के जितने भी ऊपर का जो सूचक है सब नित्य सिद्ध वैष्णव इन सबको सूचक करता है.
So this is the very narrow category at the top. These categories, very high Vaishnavas, are limited to this section, the very top of the pyramid of the definition of pure devotees.
तो ये बहुत ही कम जगह में बहुत ही छोटे में ये सब भक्त है. यानी कि ये बहुत दुर्लभ है. आप देख सकते हैं पूरे के पूरे त्रिकोण का बहुत ही छोटा सा हिस्सा इन्होंने लिया है.
Nitya Siddha means eternally liberated souls who have descended from the spiritual world, or in any case, write it in Hindi here, descended from the spiritual world or are already in a spiritual body functioning in the material world, like Narada Muni. Narada Muni is an example of a Nitya Siddha devotee who spends most of his time within the material world, adding, as Pradhan Maharaj is saying, he's unaffected. Narada's, just as Pradhan Maharaj is unaffected, so Narada Muni is also affected. So, right, the eternal lesson of the spiritual world, or Satyamesh Avatar from the spiritual world, or Nitya Siddha devotee like Narada, whose eternal pastime is to preach in the material world. Write that.
नित्य सिद्ध भक्त जो है ये वो भक्त होते हैं जो भगवान के धाम से आते हैं और भौतिक जगत से भौतिक प्रकृति से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सभी भक्त शाश्वत रूप से भगवान के धाम में रहते हैं और ऐसे भी भक्त हैं जो कि भौतिक जगत में तो कार्य कर रहे हैं लेकिन अपने आध्यात्मिक शरीर के माध्यम से, जैसे कि नारद मुनि। नारद मुनि शक्तिवेश अवतार है और वो उनका जो नित्य उनकी लीला यही है कि भौतिक जगत में वो बल जीवों को प्रचार करते हैं। तो ये नित्य सिद्ध भक्तों के बारे में महाराज ने बताया।
So Narada Muni is one of the few devotees in the universe that are in the same category as Pradhan Maharaj. In other words, they can move about in the material world and be completely unaffected.
तो नारद मुनि ब्रह्मांड में कुछ चुनिंदा भक्तों में से एक है जो प्रहलाद महाराज के स्तर में श्रेणी में आते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वे उससे बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होते।
These distinctions have to be understood.
तो हमें इन जो फर्क है इनके बीच में इसे समझना बहुत जरूरी है।
So this whole category of Vaishnavas, they are only in this peak top of the pyramid.
ये सारे वैष्णवों के बारे में जिन्होंने भी हमने जिनके बारे में भी चर्चा की है वे केवल चोच के ऊपर है, सबसे ऊपर की तरफ।
And the material universes, such great souls are sitting about very rarely found.
तो इसीलिए जो भौतिक जगत में इस प्रकार के शुद्ध भक्त, जो नित्य भक्त, नित्य सिद्ध भक्त, उत्तम अधिकारी, महाभागवत भक्त है, बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए इनकी संख्या बहुत कम है।
Now, in between this category, going down, you have got so many varieties on different levels.
तो अब इसे नीचे की ओर हम आते हैं तो बहुत सारे अलग-अलग स्तर हैं।
But on the bottom of the pyramid, there also
सबसे नीचे सतह पर भी शुद्ध भक्त ही है।
But it's clear from the structure of this pyramid that those devotees that are at the bottom of this definition, they are not in the same category, not at all in the same league as those Mahabhagavats and Nityasiddha devotees that are at the top. They cannot possibly be in the same league.
लेकिन इस हमारे त्रिकोण के इस उदाहरण से साफ साफ पता चलता है कि जो नीचे की ओर के स्तर के भक्त है वो भी शुद्ध भक्त है और जो चोंच पे भक्त है वो भी शुद्ध भक्त है, लेकिन निश्चित रूप से उनकी श्रेणी अलग है, वो एक श्रेणी के शुद्ध भक्त नहीं है।
Right here in Hindi, the bottom of the definition of pure devotee is just right who follows acharya strictly.
शुद्ध भक्त का परिभाषा यही होती है जो शक्ति से आचार्य के का पालन करता है।
If we go with that definition, who follows acharya strictly, then there are many thousands of pure devotees in ISKCON, and there are pure devotees in the Gaudiya Vaishnavas outside of ISKCON also. But if we're going just with the bottom definition, the broadest definition, the largest amount of pure devotees, those by definition, who follow Acharya.
तो शुद्ध भक्त की जो मूलभूत परिभाषा बताई है वो ये है जो आचार्य का अनुगमन अनुसरण करता है, उसका पालन करता है शक्ति से। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस्कॉन में लाखों शुद्ध भक्त हैं और यहाँ की जो इस्कॉन के बाहर गौड़ीय वैष्णव में भी बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं इस परिभाषा के अनुसार।
So in our case, it's very simple. Pure devotee means who follows strictly Vaidhi Bhakti. Anyone who strictly follows Vaidhi Bhakti and has some taste for Krishna can be called a pure devotee.
तो हमारे हमारे मामले में बहुत ही सरल बात है कि जो भी शक्ति से वैदिक भक्ति का पालन करता है और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी रुचि है, कुछ कुछ उनका आकर्षण है, तो वो शुद्ध भक्त है।
How many of you know the meaning of Vaidhi Bhakti?
आप में से कितने भक्तों को वैदिक भक्ति का अर्थ पता है?
So you all should become familiar. If you're studying science of Krishna consciousness, not just philosophy, the science of Krishna consciousness.
आपको ये सब समझना होगा, इन सब चीजों से अपने आप को अवगत कराना होगा कि भक्ति जो है एक विज्ञान है, केवल एक दर्शन ही नहीं है।
So underneath, Prabhu, underneath, who follows Acharya, right? The regulative principles, the daily regulative principles of devotional service.
तो महाराज बता रहे हैं कि आचार्य का अनुगमन करने का अर्थ है जो प्रतिदिन जो भक्ति के नियम हैं उनका शक्ति से पालन करना।
That means rising early in the morning.
जैसे इससे इसका मतलब है पहला
chanting 16 rounds carefully and attentively.
सुबह सुबह जल्दी उठना, फिर दूसरा बहुत ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करना.
Hearing the scripture daily.
तीसरा दिन प्रतिदिन scripture शास्त्रों को सुनना.
Eating only Krishna prasad.
केवल कृष्ण प्रसाद ही स्वीकार करना.
No restaurant eating. Even if it says pure veg on the sign, that doesn't count. Sorry.
किसी भी बाहर के भोजनालय में रेस्टोरेंट होटल में ना खाना, चाहे वो बहुत बड़ा बड़ा ये लिख भी दे कि शुद्ध शाकाहारी भोजन, पर ये इसमें नहीं जाना।
You go into the restaurant that says pure veg.
ऐसा कोई भी भोजनालय या रेस्टोरेंट जहाँ पे लिखा होता है शुद्ध शाकाहारी।
Go behind the curtain and see who is working in the kitchen.
तो आप उनके किचन में जाके जरूर पीछे जाके थोड़ा सा देखिए कि कौन काम करता है वहाँ पे।
Some man, fat guy who went past school and came back and maybe he washed his hands, maybe he didn't, and continued his cooking, but the sign says pure veg.
हो सकता है कि कोई मोटा तगड़ा व्यक्ति जाके अपना पेट साफ करके आया है और फिर पता नहीं उसने हाथ धोए या नहीं धोए और दोबारा से उसने खाना पकाना शुरू कर दिया। तो ये लिखते हैं शुद्ध
शाकाहारी।
तो उन्होंने तो बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया शुद्ध शाकाहारी भोजन अपने अपने अपने।
But the fat guy passes to, doesn't bathe, continues cooking, and usually they're very very dirty. Usually they're very unclean. I mean, I've seen, you have seen, is it not? Usually they're very very unclean. In other words, usually they're completely in tamagun, but the sign says pure veg.
तो महाराज बता रहे हैं कि बल्कि उन्होंने अपने बोर्ड पे बहुत बड़ा बड़ा लिख तो दिया है शुद्ध शाकाहारी भोजन, लेकिन मोटा तगड़ा जो व्यक्ति है जो पीछे से काम कर रहा है वो जाके पेट साफ करता है बिना नहाए, हो सकता है उसने हाथ भी नहीं धोए और फिर उस दोबारा से वो खाना बनाना शुरू कर दे। तो ये और पूर्ण रूप से तमोगुण में है, गंदगी में है, और लेकिन फिर भी लिखते हैं शुद्ध शाकाहारी।
So whoever partakes of these things cannot be counted as pure devotee, even if they're sticking their hand in a bean bag, even if they're chanting 16 rounds, but if they're going to restaurants and so forth, even under the excuse of pressure from family or something, I'm sorry, it kills off pure devotional service.
तो महाराज बहुत ही भारी बात बता रहे हैं कि यद्यपि आप 16 माला का जप कर रहे हो, और पर फिर भी अगर आप बाहर जाके भोजनालय में खा रहे हो तो आप शुद्ध भक्त नहीं कहलाओगे, क्योंकि शुद्ध भक्त का शुद्ध भक्ति का सब समाप्त कर देता है।
Now most men have to go to work. Majority of men have to go to be. Many men have to be at work by 8 o'clock in the morning or 9 o'clock at the latest.
महाराज जी ज्यादातर भक्तों को 9 बजे या 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता है।
They live quite a few kilometers away from the temple, so they can't come. Of course, you hear on a Sunday, but on let's say a Monday morning, we'll find much fewer people there because the men have to go to work.
तो निश्चित रूप से रविवार के अलावा सोमवार को या अन्य दिन पे मंदिर नहीं आ पाते सुबह सुबह।
But there's ways of compensating. Supposing a man doesn't have to be at work until 9 o'clock or 9:30, but usually it's on the average 9 o'clock, I suppose.
जैसे कि लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। तो महाराज बता रहे हैं कि ज्यादातर भक्तों को 9 या 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता है।
Well, he's eating breakfast. He can watch on the video camera on the computer. He can watch the and hear the Srimad Bhagavatam class on the video camera. It's broadcasting since 4:30 in the morning, you know.
तो महाराज बहुत व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं कि जब भक्त अपना सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं तो वो हमारा भागवत का जो भागवत कक्षा का प्रसार इंटरनेट पे भी होता है कैमरे के माध्यम से, तो उस पर देख सकते हैं।
One way of making up for not being physically present in class.
तो ये एक तरीका है इस चीज की कमी पूरे करने के लिए कि अगर हम कक्षा में अपने व्यवहारिक रूप से नहीं आ पाए पर अगर व्यक्तिगत रूप से तो हम इंटरनेट पर सुन सकते हैं।
Should not just kick back at home out of laziness.
परंतु ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि अब आपके पास समय भी है, आ भी सकते हैं, लेकिन आलस के कारण आपने घर पे ही इंटरनेट पे सुन रहे हैं, ये अलग बात है।
I don't feel like going to the temple today. I'm just going to, you know.
तो ऐसा सोच के मैं मंदिर जाने की इच्छा नहीं है तो अपने घर में इंटरनेट पर क्लास सुन लो, तो ये अलग बात है, ये वो बात नहीं है जो महाराज पहले बता रहे
हैं। मैं
अपना घर में आराम से बैठ के टीवी पे क्लास सुनूंगा।
But it's superior because then they won't chant the mantra, you know. But when you hear it in the classes and you know, they chant the mantras and get purified by chanting the mantras. The shlokas are purifying. The shlokas are purifying. If you're watching at home, hardly anybody's going to chant the shloka.
हाँ, तो हमारा फर्क बता रहे हैं कि घर पे इंटरनेट पे सुनने में और मंदिर में आके सुनने में फर्क ये है कि मंदिर में जो वातावरण है उसमें श्लोक उच्चारण होगा, सब कुछ होती है, बहुत ही शुद्धिकरण करता है श्लोक उच्चारण, मंत्र उच्चारण। घर में ऐसा नहीं कर पाएंगे, यद्यपि हम सुन भी रहे हैं इंटरनेट पे तो भी वो वातावरण नहीं मिल पाएगा।
But if the man who has to work, if he doesn't have time to watch and listen to the class on the computer in the morning before going to work, then he has to make it up in the evening by sitting down with the wife and family, turn off the television set.
महाराज बता रहे हैं कि अगर किसी के पास बहुत बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण सुबह समय नहीं है कि वो क्लास इंटरनेट पे भी सुन सके, तो उसको शाम को इसकी कमी जरूर पूरी करनी चाहिए, अपनी पत्नी और बच्चों को साथ में बिठाकर और फिर उसको इंटरनेट या टीवी पे जरूर उसको सुनना चाहिए।
Sit down with the wife and the children, do bhajan, kirtan as a family.
अपने बच्चों और पत्नी को साथ में बिठाकर भजन और कीर्तन परिवार में साथ में करना है।
And then read some shastra as a family and discuss amongst the family and include the children.
और फिर शास्त्र अध्ययन साथ में परिवार में बैठकर करना है और उसके ऊपर चर्चा भी करनी है और बच्चों को भी सम्मिलित करना है उसमें।
I was giving class in Malaysia one time.
एक बार महाराज मलेशिया में कक्षा दे रहे थे।
I was told it was going to be a youth crowd.
और महाराज को बताया गया कि बहुत ही भारी संख्या में भक्त आएंगे।
I thought there were going to be some RAF boys, you know.
तो उनको
that age group in their 20s, you know.
तो महाराज को ऐसा लगा कि हो सकता है कुछ RAF के भक्त जो कि 20 वर्ष की श्रेणी में होते हैं वो भी आएंगे।
It turned out that they called youth group unquote. There was about 20 children.
तो उस
20 children.
लेकिन
that was the youth group.
उस जो वहाँ पे जो youth या जवान training के भक्त थे वो बच्चे थे 20 बच्चे.
And there were only 3 or 4 guys in their 20s in the back of the room.
और केवल 3-4 ही ऐसे बड़े लड़के थे जो 20 साल की उम्र के आसपास के होंगे लेकिन बड़े के पीछे थे.
I see there weren't that many men, many men, also adult males. There were only maybe 10 or so adult males.
तो ऐसे 10 और वरिष्ठ लोग भी थे जो ज्यादा उम्र में ज्यादा बड़े थे.
And there were maybe about 20 ladies.
और हो सकता है 20 माताएं हो.
There are often more ladies than men.
Generally, sorry, स्वाभाविक रूप से माताएं ज्यादा होती हैं.
Today, because today is Sunday, there's more men than women. But in ISKCON, that is unusual, actually. Usually, there's more ladies than men.
यहाँ पर आज रविवार होने के कारण माताएं कम हैं और पुरुष ज्यादा हैं. लेकिन सामान्यतः ISKCON में माताएं ज्यादा होती हैं और पुरुष कम होते हैं कक्षा में.
So I look out and see 20 children, 20 children and 4 men, and I mean 4 youth and maybe at most 10 or 8, not that many older men, you know. So a small group of men, 20 children and 20 women. So I'm looking at this saying, well, I can't just give an ordinary class, that's not the mix here.
तो महाराज ने जब उस क्लास में आए हुए लोगों को देखा कि 20 माताएं हैं और 20 बच्चे हैं, 4 थोड़े जवान लड़के हैं और 8-9 और बड़े पुरुष हैं, तो ये सभी प्रकार से मिश्रित श्रेणी के लोग थे. तो महाराज ने सोचा कि मैं कोई सामान्य कक्षा नहीं दे सकता हूँ.
So on the spot, I changed the whole class into a children's class because they were in the majority, and it wouldn't be fair just to give an ordinary philosophy talk and all the kids not relating to what you're saying and all that. So I turned it into a children's program, interacted with them, talked about demons, talked about Krishna's pastimes, you know, and interacted with them and acted out things, made it interesting for the children. And then, you know, it was a success. Because then the children were happy, and then the adults, they were able to also get a nice Krishna conscious education by turning the whole thing into a children's program on the spot. Because otherwise it wouldn't be fair, it wouldn't be right just to ignore the children and give a regular adult lecture. Then all these children would get almost nothing out of it, you see?
जो मिशन था उसे बदलकर एक बच्चों की कक्षा में परिवर्तित कर दिया ताकि बच्चे पूर्ण रूप से उसमें भाग ले सके. तो महाराज कहते हैं बच्चों का जो बच्चों की संख्या थी वो सबसे ज्यादा थी. तो अगर हम एक स्वाभाविक सामान्य कक्षा देते तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो फिर उसमें भाग ना ले पाते और उनको उससे कुछ भी प्राप्त ना होता. तो महाराज ने भगवान कृष्ण की लीलाएं और कुछ खेल बच्चों से बात किया, चर्चा की, और इससे बच्चे बहुत खुश थे और यह बहुत ही सफल रहा. यहाँ तक कि जो 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 जवान और जो थोड़े से वृद्ध भक्त थे वो भी उससे प्रसन्न थे.
So a householder who carefully follows the program as I've outlined of family, hearing and chanting, they can also, and if they rise early in the morning, chant japa before the chant at least half the rounds or more, preferably 16 rounds, before going to work. So if you're going to chant 16 rounds before going to work, then you can't get up at 7 o'clock, obviously.
जो गृहस्थ भक्त महाराज के बताए हुए इस जो कार्यक्रम है उसका पालन करते हैं, घर में श्रवण कीर्तन करते हैं और घर और अपने ऑफिस में जाने से पहले 16 माला का जब पूर्ण कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो उनका बहुत ही अच्छा जीवन, आध्यात्मिक जीवन होगा.
On the average, a working man probably doesn't get up until 6 o'clock, and then by the time you take a shower, do your body maintenance and whatever, you know, on a few chores and like that. And it's going to be at least 7 o'clock. There's no time to chant 16 rounds before eating breakfast.
सामान्यतः जितने भी गृहस्थ होते हैं वो 6 बजे से पहले नहीं उठ पाते और फिर 7 बजे तक तो वो शरीर का ही स्नान इत्यादि करते हैं और फिर 16 माला करने का कोई समय नहीं रह जाता.
So what we find is that most men they don't tend to rest early either because they work. Sometimes they don't get home till 9 o'clock at night. Then they eat dinner. Then they want to socialize with their wife and children. And so then oftentimes they may not take rest till midnight, 12:30, sometimes even 1 o'clock in the morning. And students also, same problem, may not take rest until 1 o'clock in the morning. There's no question of getting up at 4 o'clock in the morning or 4:30. There's no question of getting up that early if you take rest at 12:30. An average person can't do that.
महाराज बता रहे हैं एक व्यक्ति जो कि एवरेज है वो अगर रात को जल्दी नहीं सोएगा 1 बजे सोएगा 12:30 बजे के आसपास सोएगा तो फिर वो 4:30-4 बजे नहीं उठ सकता. तो महाराज बता रहे हैं कि सामान्यतः जो हमारे स्टूडेंट्स छात्र हैं या फिर जो गृहस्थ भक्त हैं वो रात को लेट सोते हैं सो अपने परिवार के साथ समय बिताकर तो इसे उनके लिए सुबह उठ पाना कठिन हो जाता है.
So for a householder to be counted as a pure devotee, on the bottom of the scale here, for a householder to be counted as a pure devotee, what we see is a great challenge because they have to change their lifestyle. They have to change the lifestyle. They cannot live a non-devotee lifestyle, stick their hand in a bead bag, and consider themselves to be first-class vaishnavas. This is ridiculous, but it's going on. They stick their hand in a bead bag and don't change their lifestyle from non-devotee life. This doesn't work. This is not honesty, man.
तो महाराज बता रहे हैं कि जो अगर जो गृहस्थ भक्त हैं वो शुद्ध भक्ति श्रेणी में आना चाहते हैं तो उनको अपना जीवन शैली बदलना होगा. अभक्त की जीवन शैली जीते हुए और केवल माला में हाथ डालना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. यहाँ तक कि ईमानदारी भी नहीं है. तो अगर उनको शुद्ध भक्त का श्रेणी में आना है तो अपना जीवन शैली बदलना होगा. अभक्त की जीवन शैली से उनको ये जीवन शैली अपनानी होगी जो महाराज ने बताई.
Worse, we find that many initiated devotees don't even try to change their lifestyle from non-devotee life. They watch television, they dress in their street clothes at home, the children, the little girls in mini skirts and Mickey Mouse t-shirts. They don't even try to change their lifestyle even after initiation. So then the value of initiation becomes very reduced. From 100%, the value of initiation becomes reduced to 5%.
तो महाराज बता रहे हैं और भी खराब बात तो ये है कि दीक्षा के बाद भी भक्त अपना अभक्त की जीवन शैली को बदलना नहीं चाहते. वो फिर भी टीवी देखते हैं और हर प्रकार अपने बच्चों को भी गर्मी कपड़े पहनाते हैं, खुद भी गर्मी कपड़े पहनते हैं. तो इससे उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं करते. तो जो 100% दीक्षा की जो उनके दीक्षा में शर्त भगवान के सामने शपथ लेते हैं उसे 5% ही बन के रह जाती है.
A householder actually can be on the path of pure devotional service even if the man has to go to work at 8 o'clock in the morning. But he can still, if he has proper sadhana with the family, no television watching, no restaurant eating and all these, no cinema going, of course. If a devotee follows an intensive hearing and chanting program, so that they take a bath, come home, and go eat Krishna prasadam, and go straight into an intensive hearing and chanting program, then they can still be considered to be on the path of pure devotional service.
एक गृहस्थ भक्ति जिसको सुबह सुबह 8 बजे ऑफिस जाना होता है और समय नहीं है वो भी शुद्ध भक्ति श्रेणी में गिना जा सकता है अगर वो एक बहुत गंभीर और तीव्र श्रवण कीर्तन का कार्यक्रम अपने घर में करे जैसे कि महाराज ने बताया था. तो अगर वो इस प्रकार से करता है, बाहर सिनेमा नहीं देखने जाता, टीवी नहीं देखता, होटलों और रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता, और पूर्ण रूप से श्रवण कीर्तन का गंभीर और तीव्र प्रयास अपने घर में नियमित प्रतिदिन करता है, तो वो भी शुद्ध भक्त के श्रेणी में गिना जा सकता है।
They should not leave if they go to be counted as a householder in a category anywhere close to pure devotee. Then every spare moment has to be utilized for devotional service. That's the word criteria. That's the standard. Every spare moment has to be utilized for pure devotional service. Otherwise, they cannot be counted ever and anywhere close to pure devotee. Nowhere close.
सिद्धांत बता रहे हैं कि अगर कोई गृहस्थ भक्त शुद्ध भक्त की जो श्रेणी है उसके कहीं आसपास भी रहना चाहता है तो उसको अपने जीवन का एक 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 पल जो कि उसके पास खाली है उसे उसे भक्ति में लगाना होगा, नहीं तो फिर कोई संभावना नहीं है।
So there must be a complete change of lifestyle that is based around not only sattva guna, the mode of goodness, but is based around vishuddha sattva.
ये ना केवल सत्व गुण के ऊपर आधारित है बल्कि विशुद्ध सत्व के ऊपर आधारित है जो कि दिव्य सत्व गुण कहलाता है।
Every householder must aspire to this if they actually want to advance in devotional service.
हर गृहस्थ भक्त को इसके लिए अपनी इच्छा और अपनी अभिलाषा होनी चाहिए अगर वो वास्तविक में भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं।
Any especially initiated devotees, they must live as I'm describing, otherwise they're just fooling themselves.
विशेष रूप से जो गृहस्थ भक्त दीक्षित हैं उनको तो महाराज के बताए हुए जीवन शैली को ही के हिसाब से ही चलना चाहिए, जीना चाहिए, नहीं तो वो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं।
Okay, so we'll stop there. Any questions?
तो हम यहाँ पे विराम देंगे, किसी का कोई प्रश्न है क्या?
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गणेश शिवा परमदाम की जय, श्री श्री गोविंदाय जगन साई बदरी सभा चकृष्ट परमान श्री श्री हरि कृष्ण की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, नित्य गोपाल बलंदी हरि हरि बोल।
भक्ति मंदिर गोविंद गोसाई महाराज की।